अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम आपको आज समंदर का बादशाह हार गया उसका पार्ट 3 सुना रहे हैं और लास्ट है और माजरत के साथ काफ़ी लेट हो गया। ए बड़े मियाँ, आपने यहाँ से किसी शहजादे और शहजादी को तो जाते नहीं देखा या किसी चरवाए और इसकी मरियल भेड़ों को तो जाते नहीं देखा? नहीं, अल्लाह के नेक बंदों, नहीं देखा। 40 साल से इस इबादतगाह की खिदमत कर रहा हूँ, इस अरसे में तुम्हारे सिवा किसी का भी गुजर नहीं हुआ। पीछा करने वालों ने इबादतगाह के खंडरात की तलाशी ली और वापस बादशाह के पास चले गए। बादशाह को तमाम किस्सा सुनाया। बादशाह का गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया और वो अपने नौकरों पर चीख पड़ा, बेवकूफ़ों, इस इबादतगाह को क्यों तहस नहस नहीं कर डाला? तुम राहिब को क्यों ना पकड़ लाए? वही तो शहजादा ऐवान और वैसी लीसा थे। ये कहकर खुद इनका पीछा करने के लिए चल पड़ा। इसी दौरान शहजादा ऐवान और वैसी लीसा ने अपना सफ़र जारी रखा और तकरीबन झील के करीब पहुंच चुके थे। वैसी लीसा ने ऐवान से कहा, ऐवान ज़रा घोड़े से उतर कर ज़मीन पर कान लगा कर सुनो तो, कहीं बादशाह के मुलाजिम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे? यूँ ऐवान घोड़े पर से उतरा, झुक कर ज़मीन को कान लगाए और फौरन खड़ा हो गया। इसने कहा, इस बार तो गड़बड़ाहट की आवाज़ आ रही है और करीब से आ रही है, तो गोया खुद समंदर का बादशाह हमें पकड़ने आ रहा है। ये कहकर वो घोड़े पर से उतरी, जादू के ज़ोर से ऐवान को गहरे पानी की मछली में तब्दील कर दिया और ख़ुद मुर्गाबी बनकर और झील पर तैरने लगी। समंदर का बादशाह झील पर आया, मुर्गाबियों को पानी पर तैरते हुए देखकर खुद शकरा बन गया और मुर्गाबी पर झपट पड़ा। शकरा जैसे ही मुर्गाबी पर झपटने के लिए करीब आता, मुर्गाबी पानी में गोता लगा लेती। शकरा फिर ऊंची उड़ान उड़ता, मुर्गाबी फिर पानी में से निकल आती। शकरा फिर मुर्गाबी को पकड़ने के लिए इस पर झपट पड़ता और जैसे ही मुर्गाबी के करीब आता, मुर्गाबी पानी में गोता लगा लेती। ये अमल देर तक जारी रहा। शाम होने लगी। शकरा उड़ते उड़ते और हमला करते करते थक चुका था। आखिर वो थक हार कर वापस किनारे पर आया। शाम हो चुकी थी। शकरा समंदर के बादशाह में तब्दील हुआ और वापस अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। ऐवान और वैसी लीसा ने कुछ देर इंतज़ार किया और जब यकीन हो गया कि ख़तरा टल चुका है तो वैसी लीसा अपनी वापस शक्ल में आ गई। ऐवान को भी मछली से ऐवान में तब्दील किया और दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। कम अरसे चलते रहे या ज़्यादा अरसे चलते रहे ये तो पता नहीं, क्योंकि किस्सा कहानी सुनाना आसान तो है लेकिन वक्त का तायुन करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल एक दिन वो ऐवान के बाद अब्बा की सल्तनत के करीब एक जंगल में पहुँच गए। जंगल के किनारे पर आकर ऐवान रुक गया और अपनी बीवी वैसी लीसा से बोला, तुम मेरा यहाँ जंगल में इंतज़ार करो, मैं अपने वालदिन से मिलकर आता हूँ, फिर तुम्हें साथ ले जाऊँगा, तुम मुझे भूल जाओगे। शहजादे ऐवान, वैसी लीसा ने कहा, नहीं 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 भूलूँगा। शहजादे ने जवाब दिया, नहीं तुम भूल जाओगे। बहरहाल तुम्हारे ख्वाबगाह की खिड़की पर एक कबूतर आकर बैठे तो तुम इस वक्त मुझे ज़रूर याद कर लेना, वैसी लीसा ने कहा। यूँ शहजादा ऐवान वैसी लीसा से रुखसत हुआ और अपने वालदेन से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो अपने बूढ़े माँ बाप से मिला तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। दिन गुजरते गए, शहजादा अपनी बीवी वैसी लीसा को तकरीबन भूल चुका था, यहाँ तक कि ऐवान की माँ को बेटे की शादी की फिक्र होने लगी। माँ ने शादी की तैयारी शुरू कर दी और आसपास के मुल्कों में शादी के पैगाम भेजने लगी। इधर शहजादी वैसी लीसा जब काफ़ी इंतज़ार कर चुकी और समझ गई कि ऐवान उसे भूल चुका है तो उसने एक गरीब लड़की का रूप धारा और शहर में आ गई। शहर में एक कुमारनी के पास रहने लगी और काम करने लगी। दिन गुजरने लगे। एक दिन वैसी लीसा ने मिट्टी का एक कबूतर बनाया, उसे भट्टी में डाला। जब मलका ने पूछा कि इस खिलौने का क्या करोगी, तो इसने जवाब दिया, देखो आगे क्या होता है। या तो मेरे नसीब खुल जाएंगे या फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही काटनी होगी। इसने मिट्टी के कबूतर को भट्टी से निकाला, उसे जादू के ज़ोर से ज़िंदा कबूतर में तब्दील कर दिया और कबूतर के कान में वेसिलिसा ने कहा, ए मेरे दोस्त, जाओ और शहज़ादा ऐवान के ख्वाबगाह की खिड़की पर इस वक्त तक बैठे रहो जब तक वो तुम्हें देख ना ले। जब वो देख ले तो तुम्हारा काम ख़त्म, तुम आज़ाद हो जाओगे। वेसिलिसा ने यह कहकर कबूतर को उड़ा दिया। कबूतर उड़कर शहज़ादे ऐवान की ख्वाबगाह की खिड़की पर बैठ गया। शाही मुलाज़मों ने उसे लाख उड़ाना चाहा, वो ना उड़ा और ना पकड़ा जा सका। यह खबर शहज़ादे तक पहुंची, वो भी इस कबूतर को देखने आया। जैसे ही ऐवान ने कबूतर को देखा, उसे फौरन शहज़ादी वेसिलिसा याद आ गई। वो फौरन वेसिलिसा की तलाश में निकल पड़ा। 3 दिन 3 रातों की तलाश के बाद 4th दिन की सुबह को वेसिलिसा एक गरीब लड़की के भेष में एक कुमारनी के पास काम करती हुई मिली। ऐवान ने वेसिलिसा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, उसे इसी हाल में अपने माँ बाप के पास लाया, तमाम किस्सा सुनाया। वालदेन की खुशियों में और इजाफा हो गया, सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो ये हमारा एक फेवरेट हमारी कहानी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसे भी बताएं कैसे दूर किया जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा आज बात करने का टॉपिक है दिल आज़ारी ना करो। तो बात यह है कि लोग जो है लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखाने लग गए हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पे लोगों का दिल दुखाने लगे हैं कि जिनका कोई भी रीज़न नहीं होता, उनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों में इतना सब्र नहीं है कि वो लोगों की बातों को इग्नोर करें, ना वो इग्नोर करना चाहते हैं और ना ही कोई किसी के साथ मिलकर बैठना चाहते हैं। हर कोई एक दूसरे को बुरा कह रहा है, हर कोई एक दूसरे से शिकायत कर रहा है। तो आप जब दूसरे से शिकायत कर रहे हैं, दूसरे को बुरा कह रहे हैं, तो आप अपने बारे में क्या समझते हैं कि लोग आपके बारे में बहुत अच्छा समझते हैं? जो लोग में कसीर तादाद में लोगों को ये बातें कैसे सुन रही हूँ कि भाई फलां हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, तो हम भी उन रिश्तेदारों के लिए कोई अच्छे तो नहीं होंगे, उनके लिए भी तो हम बुरे हो सकते हैं और वो भी तो हमसे तकलीफ़ में आ सकते हैं। हम क्या अपनी ज़बानें बंद रखते हैं? हम क्या अपने दिलों के मेल साफ़ रखते हैं? हम क्या हसद नहीं करते? हम क्या लोगों की चुगली नहीं करते? या हम लोगों के छोटी छोटी बातों को पकड़ कर आगे ले जाने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी पॉइंट हो, इतनी सी भी बात हो, हम पकड़ें और इनको जो है जलील करें। आजकल तो जलील करने का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है, यानी कि बेइज्जत करना हम फ़ख्र की बात समझते हैं। और जो वो बेचारा इज्जत रखने वाला है, जो अल्लाह के काम को मानने वाला है ना, उसको आजकल बहुत बुरा कहा जाता है, यानी कि उसको बेवकूफ़ कहा जाता है कि ये क्या है, ऐसे तो बोलना ही नहीं आता, इसको तो ये ही नहीं आता। जब हम ये चीज़ ख़त्म नहीं करेंगे, एक दूसरे की दिल आज़ारी करना नहीं छोड़ेंगे जब तक माहौल में सुस्तार पैदा और बेचैनी जो है वो इसी वजह से, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को लेके बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं उसने ऐसे कह दिया, अब मैं भी ऐसा कर दूँगा, अब मैं भी यूँ कर दूँगा। तो क्या जब तक वो बात आप किसी को कह नहीं देते, आपके दिल से वो बात निकलती नहीं है और आप बेचैन रहते हैं, ना सो पाते हैं ना जाग, जब तक आप टेंशन रहती है। लोगों को अक्सर ये मर्ज हो गया है टेंशन का, तो वो इसीलिए भी हो गया कि क्योंकि वो बातों को इग्नोर कर भी इग्नोर नहीं करते और दिल में रखते हैं, और फिर जब तक वो बात निकाल नहीं देते तो उनको सुकून ही नहीं आता। सुकून आप अपने अंदर खुद पैदा करें कि भाई जो हो गया बात इग्नोर, मुझे तो सुकून चाहिए। लेकिन हमें सुकून नहीं चाहिए होता, हम लोगों के अंदर इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उनको चाहते हैं कि वो हमारे हमें अटेंशन दें। ऐसे लोगों से हम उम्मीद करते हैं जो हमारे काबिल भी नहीं होते, लेकिन हमें उन्हीं की अटेंशन चाहिए, तो हम अपने आप को तकलीफ़ में भी रखते हैं। तो अपने आप को सुकून रखने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि ना किसी की दिल आज़ारी करो और ना अपनी होने दो।
अपनी यूँ नहीं होने दो कि सामने वाले का आपको पहले ही पता चल जाता है कि वो किस मूड में बात कर रहा है। या तो आप उसके साथ रखना चाहते हैं तो अपना लहजा नरम करके बात करें तो वो सामने वाला भी आपसे लहजा नरम करके बात करेगा। लेकिन अगर आप उससे नहीं रखना चाहते तो लाजमी बात है आप भी कड़वा जवाब दें, सवाल करेंगे तो वो भी जवाब कड़वा ही देगा। लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा जो है लोगों में इतना इत्तेफाकी ना फैले, क्योंकि लोग अपने रिश्तेदारों को तो छोड़ रहे हैं, बुरा कहकर वो बुरे हैं वो बुरे हैं, लेकिन हम दूसरे गैर लोगों को अपना रहे हैं जिसके बहुत ज़्यादा गलत नतीज निकल रहे हैं। बच्चों का एतबार दूसरे लोगों को चाचा ताया बना देते हैं, पप्पो बना देती हैं, ये उनके घरों में छोड़ छोड़ के खवातीन चली जाती हैं और अपने ससुराल वालों की बुराइयाँ होते हैं ससुराल वाले कुछ लोग ऐसे के जो जिनके साथ आपका रहना मुश्किल होता है। लेकिन कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। अगर आप अच्छी तरह रहना चाहते हैं तो कोशिश करने से हो जाता है। मैं सबको गलत नहीं कह रही, किसी की मजबूरी ऐसी हो जाती है जिन्हें अकेला रहना भी पड़ता है, लेकिन आप अपने बच्चों के खुद तवज्जा दें, अपने बच्चों की खुद केयर करें, किसी के घरों में छोड़ के ना जाएं, किसी ताया चाचा पे इतना भरोसा ना करें कि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दें। तो बहरहाल आज यह बात करनी थी कि हमें दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए और ना अपनी करवानी चाहिए। हम बहुत अपने आप को कभी कभी बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर देते हैं कि नहीं ये लोग ऐसे ही हैं और ये दुनिया ऐसी ही है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे की बात का जवाब नहीं देते। या तो जवाब देते हैं तो बहुत ज़्यादा रूडली या तलख ऐसा जवाब के फिर हमें रखने नहीं है। तो आप अपनी बात का जवाब ही दीजिए और इस तरह इस अंदाज से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो। शर्मिंदा ना भी हो तो आपकी बात को समझ के और एग्री करें कि हाँ आप सही कह रहे हैं, वरना आज का जो है हर इंसान अपने आप को ही सही समझ रहा है, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो। पता नहीं ये बीमारी कैसे लग गई है लोगों को नीचा दिखाने की बीमारी लग गई है हम सब लोगों को। क्या भैया आपसे बेहतर हूँ मैं? गरीब में भी ये जरासीम पाए जाते हैं, अमीर में भी। अमीर के लोग कह देते हैं कि भाई अमीर है उसके पास पैसा है तो वो लोगों को नीचा दिखा रहा है, लेकिन गरीब के पास क्या है? उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन उसका अपना गुरूर उसको जो है दूसरों को ज़मीन दिखा रहा होता है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। कसीर तादाद में गरीब लोगों में मैंने गुरूर देखा है, चाहे वो अच्छे हैं शक्ल के हैं या नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको किस बात का गुरूर होता है कि वो आपको अच्छे वाले लोगों को भी जो है ज़मीन दिखा देते हैं कि आप इस लायक हैं। तो हम किस लायक हैं तो हमारा अल्लाह ही जानता है। तो हमें अल्लाह के लायक, अल्लाह हमें अच्छा समझे, हमें उस लायक बनाना चाहिए अपने आप को, ना कि इंसान हमें अच्छा समझे उस लायक बनाए। क्योंकि इंसान हमें अच्छा समझेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह ताला की नज़र में हम अच्छे होंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें जाना अल्लाह की तरफ है। और फ़ायदा यही होगा कि हमारे अमाल में अच्छाई लिखी जाएगी तो हमें सज़ा भी कुछ कम ही मिलेगी, क्योंकि हमारे नामा अमाल तो ऐसे हैं नहीं कि गुनाहों से तो बढ़ रहा हुआ है हमारा सारा, हमने गुनाह गुनाह करके अपने आप को बर्बाद कर लिया है, कौन गीबत चुगली करके ऐब जोइयाँ करके लोगों के बहन बेटियों पे इल्ज़ाम तराशियाँ करके जो जो कर रहा है। भाई करने दो, आप अपनी आंखें बंद करो, नहीं कर सकते तो जबान बंद करो, किसी पे कीचड़ मत उछालो कि अपने उसकी कीचड़ की छींटे आपके ऊपर आ जाए। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि ना दिल आज़ारी करने वालों में से बने और ना ही दिल आज़ारी सहने वालों में से बने, बराबर बिल्कुल बैलेंस करें अपने आप को ताकि लोग आपकी भी इज्जत करें और आप भी लोगों की इज्जत करें। शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जिसका नाम है इनाम। चलो बच्चों अंदर चलो, आज शाम से बड़ी सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं कब से तुम्हारी राह तक रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है, पास बैठो ना और सुनाओ कि खेल कैसा रहा, कौन जीता कौन हारा, हाँ ये जो घुटने छिल गए हैं कोनियाँ रिगड़ गई हैं तो बोलो दवा लगा दूँ। अभी ज़रा देर पहले बाबर मियाँ मेरी गोद में सर रखे और मेरी शाल ओढ़े लेटे थे और बार बार यही कहते थे, वही वाला गाना
आखिर हमने सुनाया, आओ बच्चों सैर कराएं, तुमको दूर देश की इनाम मिले और खुशियां भी, सुनो कहानी और बनो दोस्त, हंसो खेलो जग जग जियो। लोसमान मुन्ने और असद की उंगली पकड़े चले आ रहे हैं। बच्चों मैं तुम्हारी बात समझ गई, आज तुम्हें बड़े दूर देश की और बहुत पुराने वक्तों की कहानी सुनाती हूँ। सदियों पुरानी बात है कि बुखारा का शहंशाह अपनी नेक दिली और सखावत में शोहरत रखता था। 15वीं सदी ईस्वी के आखिरी ज़माने में बुखारा में इल्म व अदब का चर्चा घर घर था। वहाँ रियाया खुशहाल, ज़मीनें सरसब्ज और सड़कों और घरों में रोशनी ही रोशनी थी। तकरीबन सारे बच्चे मकतब और मदरसे में पढ़ने जाते थे। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर एक की ज़बान पर था। आलिमों और हुनरमंदों की कदर होती थी। बीमारों और माजूरों का इलाज होता था। चरिंद परिंद भी खुश थे और फूल पत्ते भी लहलहाते थे। शहंशाह खुद तंदुरुस्त और खुश मिजाज था और खेल कूद के मुकाबले की सरपरस्ती करता था। इसलिए सारे मुल्क के नौजवान चाको चौबंद, सेहतमंद और फुर्तीले थे। ईद त्यौहार और बड़ी तकरीबों में आवाम जोश और जज्बे से शामिल होते थे। सब बादशाह के दिलो जान से इज्जत करते थे और इसकी दराजी उम्र की दुआ करते थे। मेरे दोस्तों, तुम जानो कि इंसान के सेहत के साथ साथ बीमारी भी लगती रहती है और हर एक को एक ना एक दिन बूढ़ा भी होना होता है। शहंशाह की उम्र 70-75 साल थी। बस एक दिन क्या हुआ कि जब शहंशाह शाम के वक्त घोड़े की सवारी से वापस महल में आया तो इसके सर में शदीद दर्द हुआ और बुखार हो गया। सारे मुल्क से माहिर हकीम और मुल्क के बाहर से भी नामदर हकीम बुलवाए गए। बुखार और शदीद दर्द की बीमारी किसी की समझ में आनी थी ना आई। बावजूद उम्दा खुराक और हर तरह के आराम के शहंशाह कमज़ोर होता चला गया। एक सुबह एक खूबसूरत और नौजवान हकीम शहंशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने सुनकर कहा कि अब तक शहंशाह की इस अजीब व गरीब बीमारी को कोई नहीं समझ सका। इस नौजवान हकीम ने शहंशाह से कहा, हुजूर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। इस नौजवान की आंखों में चीते की आंखों की सी चमक और तेज़ी थी। कुशादा पेशानी, सतून नाक और आवाज़ में ठहराव था। मालूम नहीं क्यों शहंशाह को इस नौजवान हकीम की शख्सियत अच्छी मालूम हुई। शहंशाह ने इजाज़त दे दी कि वो इसकी सारी रिपोर्टों और दवाओं का मुताला करे और इलाज शुरू करे। नौजवान हकीम ने शहंशाह का बड़े खुलूस और बड़ी पूरी अक्लमंद और लियाकत के साथ 21 दिन तक इलाज किया। शहंशाह की बीमारी जाती रही। उन्होंने 5 दिन मज़ीद बिस्तर पर आराम किया और फिर गुस्ले सेहत किया। पूरे बुखारा में आवाम ने नमाज शुक्राना अदा की। इस नमाज के बाद एक शाही तकरीब हुई जिसमें पहले खैरात सदक़े तकसीम हुए और फिर वज़ीरा मुशीरों और शहर के दीगर मौजूद लोगों के लिए दरबार लगाया गया। इस शाही तकरीब में नौजवान हकीम से शहंशाह ने पूछा, ए लाइक हकीम, तू अपनी खिदमत के सिलसिले में हमसे उम्दा और मर्तबा और मर्तबा चाहता है, ज़मीन या महल का तलबगार है या तिजारत के लिए दौलत चाहता है? नौजवान हकीम बिल्कुल चुप रहा। वज़ीरों को गुमा गुजरा कि वो अदब की वजह से चुप है और शायद वो हीरे या याकूत लेना चाहता हो। दोबारा पूछने पर भी हकीम खामोश रहा। कुछ मुशीरों ने शहंशाह के हुक्म पर भी मालूमात की कि वो शायद संद या ख़ास तो तमगे की तमन्ना रखता हो, अपने ख़ानदान की किफालत की आरजू रखता हो। लेकिन इन सब बातों को सुनकर नौजवान हकीम आंखें नीचे किए चुप खड़ा रहा। इसकी इस बेनियाजी पर शहंशाह, सारे दरबारी, वज़ीर, उमरा और ज़ाती मुलाजमिन बड़े हैरान थे। शहंशाह ने जब नौजवान हकीम पर ज़रा तवज्जो की और कुछ ना कुछ इनाम लेने पर इसरार किया तो वो नौजवान हकीम बोला, आलीजा, मुझे हमेशा के लिए शाही कुतुब खाने में किताबें पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। इस इनाम के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इजाज़त मिलने के बाद नौजवान हकीम हमेशा शाही कुतुब खाने में किताब पढ़ता रहता था। साल हर साल गुजर गए और वो मुसलसल इल्म का इनाम हासिल करता रहा। प्यारे बच्चों, जब से ये दुनिया बनी है, लोग हर तरह के मुकाबलों में नुमाया कामयाबी हासिल करते रहते हैं और बहुत सोने बड़े बड़े काम करके हुक्मरानों की निगाह में इज्जत पाई, मगर ऐसे इंसान बहुत कम हैं जो अपने इनाम को लेने वाले इंसानों के लिए भी इनाम बना देते हैं। भला सोचो तो ये नौजवान हकीम कौन था? ये बू अली सीना थे। बू अली सीना का पूरा नाम अलीउल हसन इब्ने अब्दुल्ला बिन सीना था। आपके बुज़ुर्ग बलीग के रहने वाले थे। बू अली सीना बुखारा में पैदा हुए और वहीं पले बड़े। आपने 10 साल की उम्र में कुरान पाक ख़त्म किया और चंद दीगर किताबों पर अबूर हासिल किया। वो बचपन में बड़े ज़हीन और फुर्तीले थे। वो खाना मिकदार में कम खाते थे, लेकिन अच्छी और सेहत बख्श ग़िज़ा खाते थे और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाते थे। वो बड़ों का अदब करते और उनका कहना मानते थे। वो रोज़ रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके सोया करते थे। वो अपने दोस्तों से कहा करते थे, अगर मैं अल्लाह का रोज़ शुक्र अदा नहीं करूँगा तो ज़िंदा कैसे रहूँगा। बू अली सीना के बचपन के एक उस्ताद ने आपके बारे में कहा, मेरा शागिर्द बुखारा का इनाम है। तो यूँ बच्चों, ये उनका इनाम था जो उन्होंने लिया। हर चीज़ दौलत से नहीं ली जाती, इल्म बहुत बड़ी दौलत और इनाम है। आप भी कोशिश कीजिए कि इस इनाम को हासिल करें और लोगों तक भी पहुँचाएँ।